ओम शांति। ग्रुप नंबर 4, स्वयं को श्रेष्ठ समानधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्वयं को श्रेष्ठ समानधारी आत्मा अनुभव करते हो। एक है स्वयं अनुभव करना और दूसरा है दूसरे का बताया हुआ। स्वयं अनुभव को कहा जाता है स्वानुभव। अध्यात्म जो है वो स्वानुभव पर निर्भर है। स्वानुभूति, जब तक स्वानुभूति नहीं तब तक उधार लिए हुए अनुभव, उधार पहुंचे हुए हमारे निष्कर्ष, उधार लिए हुए उत्तर अध्यात्म में उन्नति का मार्ग नहीं है। किसी और ने अनुभव किया है, हमने नहीं किया है। मुरली में प्रश्न आया है, उसका उत्तर भी आ गया, हमने खाली पढ़ लिया, हमने उत्तर निकालने की चेष्टा नहीं की। धारणा के लिए सार उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, हमने निकालने का प्रयास नहीं किया, किसी और ने निकाला हुआ है, किसी और ने निकाले हुए महावाक्य है। हमारा लक्ष्य एक अभ्यास ये भी हो सकता है, मुरली पढ़कर खुद उसमें से प्रश्न निकाले और खुद उसमें से उत्तर निकाले, खुद सोचे कि इसमें क्या महावाक्य हो सकता है आज, खुद ये सोचे कि धारणा के लिए सार इस मुरली से क्या हो सकता है, बजाय इसके कि सीधा मीठे बच्चे पढ़ो और प्रश्न पढ़ो और धारणा पढ़ो। खुद एक प्रयास करना है कि इस मुरली से क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं, क्या धारणा के लिए मुख्य इस मुरली का सार क्या है हम निकाले। वो हमारा अपना चिंतन होगा, वो हमारी अपनी की हुई मेहनत होगी। तो स्वयं को श्रेष्ठ समानधारी आत्मा अनुभव करते हो। अनुभव, स्वानुभव, स्वानुभूति, सारा अध्यात्म स्वानुभव पर आधारित है। तो आज लक्ष्य रखना है कि हर चीज को अनुभव करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे उसके लिए हर चीज नहीं है, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, वो खुद ढूंढ रहा है हर चीज को। उसमें जो जिज्ञासा होती है, इनक्विजिटिवनेस, उसमें जो जानने की चाह होती है, ज्ञान पिपासा होती है, वैसी ज्ञान पिपासा, वैसी जानने की चाह हमें अपने अंदर अनुभव करनी है। ढूंढना है चीजों को, अन्वेषण करना है, खोज करनी है एक अध्यात्म की, हर रास को ढूंढना है। ऐसे नहीं समझो कि हमने सब कुछ जान लिया, ये सोचो कि हमने कुछ नहीं जाना है अब तक, और अभी ढूंढना है, आज ढूंढना है, इस मुरली से ढूंढना है, कौन से राज, कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, कब सुना रहा है, किसको सुना रहा है, ये सारे प्रश्न स्वयं से पूछना है। जितना समान में स्थित होते हो तो समान देहभान को भुला देता है। ये है स्वयं को स्वयं रिस्पेक्ट देना। समान आधा कल्प देहभान में रहे और देहभान के कारण अल्पकाल के मान प्राप्त करने के भिखारी रहे, नाम मान के भिखारी, इसका त्याग करो तो विश्व के भाग्य विधाता बन जाओगे। कल कहा बाबा ने, अभी बाप ने आकर समानधारी बनाया है। समान में स्थित रहते हो या कभी हद के मान की इच्छा रखते हो? जो समान में रहता है उसे हद के मान प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं होती, इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं। जो समान में रहते हैं उन्हें किसी के मान को, किसी से मान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, मान उन्हें स्वतः मिल जाता है, मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। और क्या होता है समान से, समान में स्थित होने से अभिमान नष्ट होता है, देह अभिमान नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होता है। और जब देह अभिमान नष्ट हो गया तो देह के आकर्षण भी नष्ट होते हैं। देह भान समान आत्माभिमानी अवस्था है, समान देह से न्यारी अवस्था है, समान वह अवस्था है कि इससे देह के आकर्षण समाप्त होते हैं। समान में स्थित हुई आत्मा ही देह से न्यारी है, और जो आत्मा न्यारी है वही बाप की प्यारी है। स्वमान और क्या करता है स्वमान, ऊंची स्थिति बनाता है, क्योंकि वह आत्मा अभिमानी स्थिति है, देह से न्यारी स्थिति है, इसके लिए स्वमान ऊंची स्थिति है। स्वमान से आत्मा में शक्ति भरती है, स्वमान से आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, साहस। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छा समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वमान आत्मा की वास्तविक अवस्था है, वास्तविक स्थिति है। क्योंकि यह हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, संसार की जो इच्छाएं हद की इच्छाएं वो सागर की लहरों की तरह है, लहरें कभी रुकती है सागर से, सागर की कभी नहीं, आती रहती है, आती रहती है, एक लहर फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, निरंतर। क्योंकि हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, एक हद की इच्छाएं क्या करती है, अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती लेकिन पैदा करती है। एक इच्छा पूरा करो तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरी इच्छा पूरी करो तो तीसरी। आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती इच्छाओं से। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है, समाप्त कर देता है। तो जब बाप सदा के लिए स्वमान देते हैं तो कभी कभी क्यों लेवे? स्वमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है, उसे अप्राप्ति की अविद्या होती है। जो समान युक्त आत्मा है सर्व प्राप्तियां उन्हें हो जाती है। बाबा ने कभी कहा है समान में स्थित हो जाना ही संपूर्णता है, संपूर्ण समान में स्थित हो जाना ही संपूर्णता की निशानी है, संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति समान। और ऐसी आत्मा सदा बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, तो सदा समानधारी आत्मा हो यह याद रखो। समानधारी सदा बाप के दिल तख्त नशीन होते हैं, क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र बादशाह अर्थात इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है केयर फ्री एम्परर, केयर लेस नहीं, केयर फ्री। केयर फ्री अर्थात फिक्र से परे, फिक्र से फारिग, और केयर बेफिक्र दूसरा एक शब्द है, बेपरवाह या फिर लापरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह नहीं, बेफिक्र। बेफिक्र अर्थात केयर फ्री, और वो अर्थात केयरलेस, केयरलेस नहीं, यहाँ तो संपूर्ण अटेंशन है। बेफिक्र बादशाह अर्थात संपूर्ण अटेंशन की बात है यहाँ। बादशाह का जीवन कितना श्रेष्ठ होता है, दुनिया वाले के जीवन में कितनी फिक्र रहती है, उठते हैं तो भी फिक्र, सोएंगे तो भी फिक्र, और आप सदा बेफिक्र हो तो जो समानधारी आत्मा है वो निश्चिंत है, फिक्र नहीं है उसे, चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, पर कोई परतंत्रता नहीं, स्वतंत्र है वो आत्मा। पांडव को फिक्र रहती है कल व्यापार ठीक होगा कि नहीं, कल देश में शांति होगी या अशांति, यह फिक्र रहती है। कल बच्चे अच्छी तरह से संभाल सकेंगे या नहीं, यह फिक्र माताओं को रहती है। दुनिया में कुछ भी हो लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो औरों को भी शांति देने वाले हो। हम सब कौन है? संसार की आत्माओं को शांति देने वाले, शांति वाले सम्मान कौन कौन से है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति दाता हूँ, मैं शांति देवा हूँ, शांति का चुंबक हूँ, मैं शांति शांति दूत हूँ, मैं शांति का भंडार हूँ, शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ, पांडव वन में लगा हुआ है, और शांति की खान, शांति का कुंड हूँ, शांति का सागर की संतान हूँ, मास्टर शांति का सागर। जैसे वो जगदीश भाई कहीं गए थे तो उन्होंने भाषण दिया तो लोग इतने प्रभावित हो गए, कहने लगे आप तो एकदम भगवान हो, आप बस भगवान ही हो। बोले हाँ बराबर कहा आपने, मैं भगवान हूँ, वो जो भगवान है उसी का मैं बच्चा हूँ। तो मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, और शांति के कौन से समान है? शांतिनाथ हूँ। और शांति देवा, शांति नाथ, शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें विश्व में फैल रही है। मैं शांति का अवतार हूँ, शांति स्थापन करने के लिए अवतरित आत्मा हूँ। शांति स्तंभ हूँ, बरबर मैं शांति स्तंभ हूँ। और भी कुछ है? शांति दूत, फरिश्ता, अवतार, शांति धाम का रहने वाली आत्मा हूँ, शांति वन में रहने वाली आत्मा हूँ,
शांताराम।
तो दुनिया में कुछ भी हो लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो औरों को भी शांति देने वाले हो। या अशांति होंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। अपने घर के बाहर बहुत हंगामा, आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा, तो आप उस समय क्या करते हो? क्या करते हो अगर बाहर हंगामा हो रहा तो? सकाश देते हैं, शांति की वाइब्रेशन देते हो, याद में बैठ जाते हो ना, इमर्ज करके उन्हें शांति दोगे। याद, बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना, यही सेवा करो। क्या करते हो जब अशांति का वातावरण हो तो? शांति लेकर शांति देते हो। बाइबल में कहानी है, एक तूफानी रात, एक समुन्दर जिसमें तूफान आया हुआ है, तूफान में कुछ लोग सोए हुए हैं। अचानक जब तूफान आता है तो सब उठ जाते हैं, सब में हलचल हो जाती है, सब चिल्लाने चीखने लगते हैं कि क्या करें, तूफान आ रहा है, जोर से बारिश हो रही है। और उसी बीच उसी नैया में एक व्यक्ति होता है, वो आराम से निश्चिंत सोया रहता है, निश्चिंत, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं। बारिश उसके ऊपर गिर रही है, नाव हिल रही है, डुल रही है, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, अतिवृष्टि, और तूफान ऐसा कि भयंकर तूफान कि जिसे बचने की कोई संभावना ही नहीं उस तूफान से। वो जितने लोग उस नाव में हैं सभी बहुत भयभीत है, कुछ बोला, इतने भयभीत है सभी और चिल्ला रहे, चीख रहे। फिर उस एक ही आदमी है जो आराम से सोया पड़ा है, फिर उसको उठा रहे, अरे उठो, देखो तुमको डर नहीं लगता, इतना बड़ा, इतना भयंकर तूफान आ रहा है, झंझावात। तो आदमी तुम शांति से उठता है, बोलते इतने भयभीत क्यों हो, कहाँ है तुम्हारा ईमान, वेयर इज थाय फेथ। और वो खड़ा होता है, आकाश की तरफ देखता है और कहता है, शांति, शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल। क्या कहता है? पीस बी स्टिल, शांति, शांत हो जाओ। और देखते ही देखते तूफान शांत हो जाता है, देखते ही देखते बारिश रुक जाती है, देखते ही देखते सागर, समुद्र शांत हो जाता है। कौन था वो व्यक्ति? जीसस क्राइस्ट। कहानी है ना बाइबल में, तो ये कहानी केवल जीसस की नहीं है, हमारी भी है। ये संसार ही वो सागर है और यहाँ पर तूफान आ रहेगा, अतिवृष्टि होगी, लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और हम खड़े होंगे और प्रकृति को आदेश देंगे। उस नैया के उसके शिष्य जो होते हैं बैठे, वो कहते हैं, ये कौन व्यक्ति है कि इसकी, ये प्रकृति भी इसका सुनती है, इवन द विंड ओबेज हिम, कौन है ये? तो प्रकृति जीत कौन है? हम आदेश करेंगे प्रकृति को कि शांत हो जाओ, तो प्रकृति भी शांत हो जाएगी। हम आत्माएं, हमारे सामने अशांत, असंख्य अशांत आत्माएं इमर्ज करो और उन सबको क्या कहो? शांत हो जाओ, या फिर अपनी शांति की किरणें उन्हें दो, तो सब आत्माएं शांत हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, दुनिया में भी कुछ भी हो लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप शांत स्वरूप आत्मा है, तो औरों को भी शांति देने वाले हो। यह अशांति होगी तो आप भी घबरा जाएंगे। आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा है, घर के बाहर, तो आप उस समय क्या करते हो? हंगामा देखते रहते हो इंटरेस्ट से कि शांति देते हो, देखने के लिए क्या होता है दोनों में, कौन जीतता है, दो लोग लड़ रहे हैं, याद में बैठ जाते हो ना, बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना यही सेवा करो, क्योंकि जो अच्छी चीज आपके पास है और दूसरों को उसकी आवश्यकता है तो देनी चाहिए ना। शांति अच्छी चीज है ना, अच्छी है ना, सबसे बढ़िया रेयर कमोडिटी है, दुनिया वालों के पास नहीं है। तो अशांति के समय पर मास्टर शांतिदाता बन, औरों को भी शांति दो, घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होगा वह भी और अच्छा। विकारों के वशीभूत आत्माएं मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका तो काम ही है लड़ना, क्योंकि विकारों के वशीभूत है, परवश है, अधीन है, परतंत्र है, बेड़ियों में है, उनका काम ही यह है। लेकिन आपका काम क्या है? ऐसी आत्माओं को शांति देना, शांत करना, यह हमारा काम है। क्योंकि विश्व कल्याणकारी होना, विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती है, तो हमारे देने के समान इमर्ज करना है। तो सभी शांत रूप होना। माता है चार दीवारों, चार दीवारी में रहने वाली अबलाए नहीं हो, कौन हो? शक्तियां हो। कल कहा ना, शक्तियों के गले में और देवताओं के गले में माला दिखाते हैं। कल की बोलने में कहा ना, माला दिखाते हैं। तो जो गुण माला यहाँ पहनते हैं वही विजय माला भी पहनते हैं, यही इस बात का है ना कल। तो शक्तियां हो तो विजय माला तो गले में है ही। तो शांति सदा, सॉरी, तो शक्ति सदा वरदानी होगी और पांडव भी सदा महावीर, पांडव भी सदा महावीर। महावीर कल की मुरली में भी आया था, कर्नाटक वालों को क्या कहा था बाबा ने, पालना कैसे देनी है, वृद्धि तो बहुत अच्छी की है परंतु अभी शांति शक्ति स्वरूप से
पालना देने वाली
महावीर बनो, शक्ति स्वरूप बनकर पालना देनी है, महावीर बनना है, उसमें महावीर बनना है। महावीर की सदा विजय है, कभी हार नहीं खा सकते। अच्छा, तो क्या सुना? सोमान, सोमान में स्थित रहना, सोमान के ऊपर चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, सोमान का सोमान लिखना, रोज की मुरली हुए मुरली में आए हुए सोमान निकालना और फिर उसके ऊपर एक एक सोमान लेकर उसके उसका विस्तार करना। केवल उसमें संतुष्ट नहीं हो जाओ, एक सोमान सुन लिया मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, फिर प्रश्न पूछो क्यों हूं, किस कारण से हूं, अच्छा किसने कहा मैं हूं, ये चिंतन है, किसने कहा मैं हूं, कब कहा, किसको कहा, मुझे कहा, क्यों कहा, ऐसे ही कह दिया झूठ मूठ कि सही में कहा कि वास्तव में कहा, इसका चिंतन, एक एक सोमान का विस्तार करना है। और कभी कभी योग में केवल सोमान ही लेकर बैठे तो भी वो योग है, एक ही सोमान ले लिया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, किसने कहा, स्वयं भगवान ने कहा, जो विश्व कल्याणकारी है उसने कहा, किसे कहा, मुझे कहा, कब कहा, इस समय कहा, कौन सा समय है ये, संगम का समय है, 5000 साल का अंतिम समय है ये, उस समय आकर कहा, क्यों कहा और मुझे क्यों कहा, उसको विश्वास है कि हम ही वो विश्व कल्याणकारी आत्मा, उसे भी उसको पता है कि इसी ने विश्व कल्याण किया था कल्प पहले, इसके लिए अभी मुझे कह रहा है, ये विस्तार है उसका। अभी विश्व कल्याणकारी हूं तो मेरे क्या क्या कर्तव्य है, इसकी बड़ी लिस्ट है, फिर मुझे क्या करना है अगर मैं विश्व कल्याणकारी का मुझे टाइटल दे दिया गया, जैसे हमें अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो हमारे सामने फिर दूसरा प्रश्न आता है, अभी मुझे क्या क्या करना है, कोई डिपार्टमेंट का हेड बना दिया तो एकदम तुरंत दूसरा प्रश्न होता है, अभी मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ बाबा ने आपको टाइटल दे दिया कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो सीधा दूसरा प्रश्न आता है, अब मुझे क्या क्या करना है, तो फिर मैं क्या क्या करूं। जो अशांत आत्मा है उनका कल्याण करना है, विकारी आत्मा है उनका कल्याण करना है, अज्ञानी आत्मा है उनका कल्याण करना है, स्व का कल्याण करना है। मैं विश्व कल्याणकारी और बिना स्वयं के कल्याण करे विश्व का कल्याण कैसे कर सकता हूं, ये भी एक प्रश्न उसमें से उठता है। फिर ये चिंतन की धारा अपने अंदर अविरल बहती रहे, चिंतन की धारा। तो बाबा कहते हैं समान देहभान को बुलाता है, स्वयं समान अहंकार को नष्ट करता है। जो जितना समान में स्थित है वो उतना शक्तिशाली है। समान आत्माभिमानी स्थिति है, और जो आत्माभिमानी स्थिति में है वही बाप को याद कर सकते हैं, वही याद में रह सकते हैं। उन्हीं में विल पावर है, उन्हीं में इच्छा शक्ति है, उन्हीं में पावर है। जो आत्माभिमानी है वही, और क्या है, समान की लिस्ट निकालनी है इसकी भी, समान से क्या क्या होता है। और उसके विरुद्ध में फिर जो कल बाबा ने कहे थे ना, जो हीन भावना है, मैं कमजोर हूं, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे से तो होता नहीं है, ये सब हीन भावनाओं को नष्ट करना है। तो समान हीन भावनाओं को भी नष्ट करता है, समान इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को नष्ट करता है। समान में रहने वाली आत्माओं के पीछे मान तो उसके पीछे पीछे आता है, जो समान युक्त है उनके समान सेवाओं के पीछे उन्हें भागना नहीं पड़ता। जो समान में है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, जिस सेंटर के बहन इस समान में, वहां देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर आ जाएगी आप ही, उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, आ जाओ वो स्वतः ही आएगी, वो वाइब्रेशन से उन्हें खींचेंगे। समान में रहने वाली आत्मा वायुमंडल को प्रभावित करती है, जो जिस समान में है उस समान के किरणें फैलेगी चारों ओर। तो ये सारे समान के एडवांटेजेस, यूजेस, सिग्निफिकेंस। तो मैं समानधारी आत्मा हूं, बाबा कहते इसे सदा याद रखो। और जो समानधारी है उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, ना ही अतीत का पश्चाताप, क्योंकि हर कर्म समान में स्थित होने से जो कर्म किए जाएंगे वो भी श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि समान आत्माभिमानी स्थिति है, संपूर्ण आत्माभिमान है उसमें। फिर बाबा ने पांडवों से बात की, पांडवों को फिक्र रहते हैं क्या, और फिर शांति की बात कि दुनिया में कितनी भी अशांति हो पर अरंतु आपका काम है घबराना नहीं। सबसे पहली चीज है घबराना नहीं। समान वाली आत्माएं सदा ही निर्भय होगी, निडर होगी, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्थिति है, साहसी होगी, हिम्मत होगी उनके अंदर, वो घबराएंगी नहीं। क्योंकि घबराना ये जो ये देहभान का लक्षण है, देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, घबराना जो है, भय जो है, वो आत्मा की स्थिति नहीं है। आत्मा तो निर्भय है, वहां भय किसका, क्योंकि क्यों भय नहीं है, मनुष्य को सबसे ज्यादा भय किस चीज का है, मृत्यु का। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में है तो वहां मृत्यु है ही नहीं, फिर डर किस बात का, चाहे शेर सामने आ जाए, भालू सामने आ जाए, कुछ भी आ जाए, आत्माभिमानी स्थिति है तो देवेंद्र भाई भालू क्या हो जाएगा, भालू क्या करेगा, आत्माभिमानी स्थिति के साथ। देखा नहीं, पूर्व के सारे जो साधु मुनि उनके आश्रम में क्या कह रहे थे, वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र जब वो पहले राजा था, जब आता है प्रभावित हो जाता है देखकर, शेर बकरी सब एक साथ, बोलते ये क्या है, इतने हिंसक पशु अहिंसक कैसे हो गए इस आश्रम में। उसके बाद ही तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी इसके जैसा ऋषि बनूंगा। पहले तो वो राजा होता है, उसके पर अहंकारी राजा होता है, बहुत ज्यादा अहंकार। और जब देखता है कि वशिष्ठ के आश्रम में ये सारे हिंसक पशु पक्षी भी अहिंसक हो गए, तो उसमें इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी इसके जैसा बनूंगा, पर वो अहंकारी बहुत होता है, विश्वामित्र क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, अहंकार बहुत होता है। वो बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा, तो वो पहले राज ऋषि बनता है, उसमें स्टेजेस है, फिर उसके बाद में वो वापस आता है वो नंदिनी गाय को लेने, पर वो वशिष्ठ देता नहीं उसको, बोलता है तुझे ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा। परंतु ब्रह्म ऋषि बनने की स्टेप पहली है कि अहंकार विसर्जन करना है, उसकी पहली शर्त ही वो है कि जिसमें अगर तुम इस लक्ष्य से बनते कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, ये उसका क्राइटेरिया ही नहीं है, वहां पे उसको अहंकार छोड़े सिवा वो बन नहीं सकते। तो समान से हिंसक पशु भी हिंसक बन जाते हैं। जब ऋषि मुनि ये कर सकते तो हम नहीं कर सकते मंजू बहन, हम ही तो ऋषि मुनि है, हम ही तो वो महात्मा है, योगी है, तपस्वी, राज ऋषि हम है। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, बाबा ने बोला है ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, एक मुरली में कहा था, क्योंकि तुम राज ऋषि हो। ओम शांति।